শুনো, চৌকি ভালো নয়, চৌকি এমন চাই যে সে ভিতরে চলে আসে। হ্যাঁ, যেরকম বৃন্দাবনে আছে, মথুরা আছে, আর একটু উঁচু বলো।
একটা ছিল সঞ্জয় নিয়ে গেছে,
কোথায় নিয়ে গেছে? চেয়ার পর বেঠেগি, চেয়ার পর বেঠেগি, নয় তো চেয়ার জোর সে বলো, থোড়া জোর সে বলো, মাইক ঠিক নেই হ্যাঁ। ঠিক নাই, বলো ঠিক ঠিক যারা নিকট লেখক नहीं आ रहा है,
स्पष्ट आवाज नहीं मारा जी, माइक अंदर अंदर लगा दो।
ए चलो ये तो ठीक आ रहा है।
Gracias.
थोड़ा सा यहाँ लगाओ, हो हमको सुनाई नहीं। समझ में नहीं आ
अर्थात उसका स्वभाव मांगने वाला नहीं होना चाहिए, बार बार नहीं होना चाहिए।
उस समय यदि हम कोई भी काम करते हैं वो जो होता है वो स्वाभाविक होता है। कभी ऐसी स्थिति आ जाती है उसमें बुद्धि काम नहीं कर देगा, ना कोई खान से कोई चीजें आ गया है न करके, जो बुद्धि काम नहीं करती है वही से अस्वाभाविक। यहाँ बता रहे हैं कि स्वाभाविक स्थिति में जो हम मानते हैं वो बुद्धि पूर्वक होता है, वही कह रहे हैं स्वभाव होता है। इसे द्रौपदी पांडव ने जो मांग की उनका स्वभाव नहीं है, क्यों ये स्वभाव में होता तो जंगल में जाते क्यों? आगे बोलते हैं कृष्ण आशीर्वाद करना कि हम लोग युद्ध जीत जाए, ऐसे सभी बोलते हैं कृपा करो हमें राज्य प्राप्त हो जाए, परंतु वनमन वनमन कर रहे हैं वो लोग, कृष्ण साथ में है मांगते हैं। इसलिए देखा जा रहा है कि उनका स्वभाव निर्णय है, इसलिए उनका अल्लाह के साथ रिश्ता नहीं है, इसलिए मात्र एक दो बार मांगने से ही उनकी भक्ति में कमी नहीं आ जाती है, बल्कि विपत्ति में पड़ने पर अस्वाभाविक स्थिति में पड़ने पर कभी भक्ति को मांग भी लेता है उससे उसकी भक्ति दूषित नहीं तो दूषित हो जाती है। क्यों हो जाती है? साधन सही है, जब विपत्ति में पड़ते हैं हमारी बुद्धि काम नहीं करती है उसमें उसे वही नाम निकलता है जिसके पर हमारी स्मृति होती है, कैसे चल गया अरे बाबा अरे भैया नहीं निकलता है। उस समय यदि अकस्मात बुद्धि काम नहीं कर रही है उसमें आकर्षण निकल जाए तो ये भूषण है, ये भूषण नहीं माना जाता, कोई रूप से पा रहे कृष्ण कर दिया किस श्लोक के द्वारा यह पता चलता है कि द्रौपदी पांडव कुछ रहते हैं और अपने पद से मेरे विद्यालय क्या स्वयं अन्यदास ने ज्ञान करता तुम्हारे नाम से भक्ति ज्ञान और कर्म से शून्य नहीं होनी चाहिए। अन्य अन्यदास से शून्य ने कहा ज्ञान तुम्हारे शून्य या रहता नहीं अनाप्त, अर्थात भक्ति आपको नहीं होनी चाहिए। एक होता नाम नफी कुछ तत्व नहीं ना मतलब तत्व के नष्ट हो जाना, एक बार नष्ट नहीं होना किस एक अंश में उसका अस्तित्व रह जाना। यहाँ बता रहे हैं कौन से ज्ञान और कौन से कर्म के कर्म से भक्ति लग जाती है, तब बता रहे हैं ज्ञान है दो प्रकार, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान और है तत्व ज्ञान। ये निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान ही भक्ति का घातक है, मतलब जीव ही ब्रह्म ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्म में नाम ब्रह्म यही है ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, अर्थात जीव ब्रह्म जब माया ग्रस्त हो जाता है तो जीव बन जाता है और जब माया मुक्त हो जाता है तो निर्विशेष ब्रह्म बन जाता है, यही है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान। तो भक्ति में निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान ही घातक है, वो तत्व क्या है भगवत तत्व भक्ति तत्व नाम तत्व धाम तत्व तत्व ये भक्ति का हानिकारक नहीं है बल्कि अवश्यता है। उसी प्रकार से कर्म 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 से नाम ये नाम कैसे होते हैं तो वो होता है ये कर्म से भक्ति दो प्रकार से आरोप लगाते आरोप लगाते नित्य नैमित्तिक कर्म, नित्य कर्म मतलब ब्राह्मण की संध्या पूजा जाए पहले नित्य कर्म नैमित्तिक कोई निमित्त आदि कर्म किए जाते हैं श्राद्ध प्रायश्चित किए जाते हैं ये नैमित्तिक कर्म। इन कर्मों को कर्म से भक्ति दो प्रकार होती है, एक तो कुछ लोभ से एक हाथ भक्ति में आ गया दूसरे मंत्र में ले लिया भजन भी आरंभ कर दिया परंतु वो भय लगाया उसको अरे यदि मैं तो भी हिंदू कर ठीक है यदि मैं साध कर ना तो हूँ तो ये मुझे शास्त्र की बात है जो शास्त्र का आदेश है मुझे बाप के मेरे अपराधता हो जाए इस भय से वो क्या कर रहा है ये कर्म कर्म नित्य नवीन कर्म का आश्रम में कर रहा है भगत मिल जाए अथवा कई बार धारणा हो जाती है उसकी साधन की कलिष्ठ साधन की हम भजन कर रहे हैं भजन करते करते यदि एक कुछ कर्म भी करते सोच के है क्या तो बल्कि कुछ दान होने वाला है बल्कि कुछ हमारे कुछ पदों की उन्नति हो जाएगी दान पुण्य करें तो क्या है दान पुण्य तो खराब नहीं है कि कृष्ण ने कहा है यज्ञ दान सबसे वहां और अनुमान नहीं है ये करणीय है इससे मनुष्य के चित्त शुद्ध होता है ये सुनकर क्यों सोचता है क्योंकि अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है तो भक्ति तो कर ही रहे हैं थोड़ा करें चित्त अशुद्ध हो जाएगा। इस बुद्धि से भी इन कर्मों से भी वो भक्ति भग जाएगी, इससे तो रहित कहा गया। परंतु भक्ति संबंधी जो कर्म है, सेवा संबंधी जो कर्म है, उनको प्रचार नहीं करना है, उनको करना ही है। तो ये तो कहते हैं कौन लक्षण ऐसा दक्ष लक्षण, और जो लक्षण है कृष्ण अनुशीलन अनुकूल रूप में यह स्वरूप लक्षण, और स्वरूप लक्षण ही वस्तु का अपना स्वरूप, जो लक्षण अपने स्वरूप में है, अर्थात वो लक्षण नष्ट हो, वो लक्षण वस्तु से नष्ट हो ही नहीं सकता है। वस्तु नष्ट होगी तभी लक्षण नष्ट हो सकता है, क्योंकि वह स्वरूप का लक्षण। परंतु जो गुण तटस्थ लक्षण है, तटस्थ लक्षण के द्वारा जब किसी वस्तु का अनुमान लगाने जाते हैं, वो अनुमान सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उस स्वरूप लक्षण के द्वारा वस्तु का अनुमान विभिन्न रूप में ठीक करेगा। तटस्थ लक्षण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसलिए कह रहे हैं कि भक्ति कैसे होनी चाहिए, अनुकूल रूप में। अब जरा अनुकूल क्यों लगाया,
श्लोक की व्याख्या करने के लिए नहीं कहा। रूप गोस्वामी का और बहुत से वैशिष्ट हैं, उन वैशिष्टों को बोलो, समय काफी हो गया।
तो इस प्रकार तो उन्होंने जो भक्ति का जो वर्णन किया, फिर उन्होंने बताया कि भक्ति किन प्रकार की होती है, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। जब तक ये साधन रूप बता रहे हैं, भक्ति कोई तो दिखाई पड़ती है। साधन भक्ति साध्य भक्ति, साधन से जो सिद्ध होती है वो साध्य भक्ति कहते हैं। और उन्होंने यहाँ पर इसमें तीन विभाग दिखाए हैं। साधन रूप में ये दिखाई पड़ता है, साधन से जो सिद्ध होती है साध्य भक्ति कहते हैं।
साधन भक्ति किसको कहते हैं,
परंतु
साधन भक्ति किसको कहते हैं, ये बोलता क्यों नहीं?
परंतु रूपाले ने यहाँ पर भक्ति तीन विभाग वर्णन किया, साधन भक्ति, साध्य भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। उन्होंने ये दिखाया कि साध्य भक्ति दो प्रकार की होती है, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। अब वो ये दिखा रहे हैं बीच में जो भाव भक्ति है, बीच में जो भाव भक्ति है उसको इधर प्रेम के अंदर ले लें या फिर उसको साधन भक्ति में ले लें। तब आप इसके लिए तीनों के लक्षण जानने पड़ गया। तब बता रहे हैं भाव भक्ति जब आ जाती है उसमें लक्षण अलग से है। क्या है, बोलते हैं क्या, उत्पन्न रत्य सम्यक नैर्विघ्न अनुपागतः कृष्ण साक्षात गीता युग का साधक प्रकीर्तिता। जब भाव भक्ति साधक के हित में आ जाती है तो उसके लक्षण बता रहे हैं। अर्थात भाव भक्ति हित में आने के बाद भी अभी कुछ जो कुछ अनर्थ इत्यादि मतलब आभास अभी है, होने पर ही परंतु कृष्ण साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त हो गई। अब ये तो भावक के लक्षण बताया, अब प्रेम के बता रहे हैं क्या, अभी क्या कारण मिलेगा, सदा कृष्ण आश्रित क्रिया सिद्ध्याशु सतत प्रेम स्व आसन प्राय। अब जहां साधना प्रेम भक्ति वो जो प्रेम भक्ति के जो भक्त के लक्षण बता रहे हैं, अभिज्ञाता फिर क्लेशा अर्थात उसमें साधक समस्त प्रकार के क्लेशों से विमुक्त हो जाता है। अब भावभक्ति में ये बताया अभी क्लेश है, यदि कृष्ण साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त हो चुकी है परंतु क्लेश अभी है, और प्रेमी भक्त बता रहे हैं अभिज्ञाता फिर क्लेशा उसके समस्त क्लेश नष्ट हो जाते हैं, इसलिए भावभक्ति प्रेम भक्ति एक नहीं हो सकती, क्योंकि अंतर दिखाई पड़ रहा है भाव भक्ति में साधक के अभी अनर्थ कुछ है और प्रेम भक्ति में अनर्थ नहीं है। तो यहाँ से निश्चित हो गया साधन भक्ति प्रेम भक्ति भाव भक्ति और प्रेम भक्ति एक नहीं है, परंतु अंतर भी नहीं है। तो बता रहे हैं भाव संधारणा बुद्ध ब्रह्म निकलते थे, भाव और प्रेम भक्ति में अंतर नहीं, परंतु परिपक्व अवस्था और परिपक्व अवस्था का अंतर है। जब भाव भक्ति अत्यंत गर्भीभूत वस्तु विभूत अवस्था प्राप्त हो जाती है उन्हें प्रेम निकलते थे, पंडित लोग उस भाव भक्ति को ही प्रेम भक्ति का नाम देते हैं। अब एक साधन भक्ति मतलब हम कहना ये निर्गुण कर रहा है कि भक्ति को ही प्रकार की है, तीन प्रकार की नहीं है। तो यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि साधन भक्ति भाव भक्ति प्रेम भक्ति को अलग अलग हो गई। अब देखते हैं साधन भक्ति, अब साधन भक्ति का लक्षण बताते हैं कृति साधक हुए साध्य भाव साधना विधान नित्य सिद्ध भाव प्राप्त। अब इसमें साधक के लक्षण बता रहे हैं कृति भी, अर्थात साधन भक्ति किसे कहते हैं, जब जो भाव भक्ति है जो वही भाव भक्ति जब इंद्रियों के द्वारा साधित होती है, या महत्वपूर्ण बात है कृति का है कृति भी इंद्रियों के द्वारा, भक्ति इंद्रियों का विषय नहीं है, भक्ति इंद्रियों से कभी नहीं होती है, भक्ति आत्म की वृत्ति है इंद्रियों की वृत्ति नहीं है, उन्हें कृति भी इंद्रियों से होती है बताया बता रहे हैं। इसका मतलब साधक पूरी तरह से भी अनर्थग्रस्त है। और दूसरी बात होता है क्या साध्य भाव, अर्थात साधन भक्ति साध्य भाव को प्रकट करती है, तो एक होता है जनक एक होता है जन्य, या साधन भक्ति जनक हो रही है और भाव भक्ति जन्य हो रही है, जनक और जन्य कभी एक नहीं हो सकते, इसलिए भाव भक्ति साधन भक्ति अंतर्गत कभी नहीं आ सकती, क्योंकि भाव भक्ति के प्रभाव से साधन भक्ति प्रकाशित होती है। इसलिए दिखा जा रहा है कि साधन भक्ति भाव भक्ति और प्रेम भक्ति का तीन का स्वरूप अलग अलग हो गया। भगवान सकल भक्ति का जनम भाव ने विवश कर
बस एक वैशिष्ट बतलाया
और बोल,
उसमें तुमने कुछ बोला ही नहीं
और बोलो
और अब समय कहाँ है, अब तो सात बज गया। ओ यो देखो ये लोग कैसे बोलते हैं, सभी का वर्णन करेंगे इन ब्रीफ 10 to 12 minutes। तुम मथुर वृंदावन में नहीं गया था, हमारा भाषण नहीं सुना,
एक दिन गया था, एक दिन
I don't know. So special is that. Seek
है। क्या करता है सब समय बंद, कभी खोलना कभी कुछ, क्या जाने क्या मैसेज। विमल कृष्ण
मकुंद कुमार चंद्रबाबू को कहा जाता है
গোস্বামী রূপ গোস্বামী কৃষ্ণ লীলা মে হমার পাশ আকর কে খারাপ হয়ে যা ক্যা করতে হয় খারাপ ওই করতে হয় वही ठीक कर खराब करता बस करो छोड़ दो कृष्ण लीला में जो रूप मंजरी थी वही कृष्ण लीला में राम महाप्रभु जी के लीला में रूप गोस्वामी थी। रूपमंजरी उच्च कोटि की राधा पक्षीय गोपी थी। कृष्ण बुलाने पर भी वो नहीं जाएंगे, बहुत उच्च कोटि की तांबुलार्पण पाद मर्दन पे उदान आज। किंतु जहां पर कृष्ण और राधिका जी अस्त व्यस्त हैं, ललिता विशाखा इत्यादि प्रिय नर्म शक्तियां नहीं जा सकती, वहां भी असंकोच रूप से ये सेवा करती। इतना होने पर भी रूपमंजरी ने कैसे साधन करके वो भाव पाया जाता है नहीं बतलाया, किंतु रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु की कृपा और प्रेरणा से बतलाया। कृष्ण और उनके जन श्रीदाम सुबल आदि सखा माँ जशोदा नंद बाबा ललिता विशाखा इत्यादि के भावों को स्मरण करके भजन करने से उनके अनुगत में तब ऐसी भक्ति मिलती है। इसका भक्ति रसा में सिंधु उज्ज्वल लीन मणि में विशेष करके बतलाया है। और उदाहरण के लिए विदग्ध माधव ललित माधव इत्यादि हंस दो इत्यादि ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया। महाप्रभु के पहले केवल भक्ति थी, केवल भक्ति माने वैधि भक्ति। उसके पहले महाप्रभु जी के पहले रसमयी भक्ति नहीं। रूप गोस्वामी जी ने महाप्रभु की प्रेरणा से भक्ति रसामी संधि इत्यादि ग्रंथों में देखा कृष्ण के प्रति स्थायी भाव स्थाई भाव पांच प्रकार के हैं, शांत दास सर्थ बात समझ में, ये बदलते नहीं है, भाव बदल सकते हैं किंतु स्थाई भाव नहीं बदलता किसी भी हालत। यशोदा जी का बात्सल्य भाव कभी भी नहीं बदल सकता, इस स्थाई भाव के ऊपर विभाव सात्विक व्यभिचारी इत्यादि भाव मिले तो ये भक्ति रस होता है। इस रूप गोस्वामी की कृपा से ही आज विश्व के सारे संप्रदाय इन चीजों को जान रहे हैं और हम लोग जान रहे हैं, उसके पहले नहीं जानते। वैदिक भक्ति से कृष्ण प्रसन्न तो होते हैं, वशीभूत नहीं होते, किंतु इस भक्ति के द्वारा, राधानुगा भक्ति के द्वारा, राधात्मिक भक्ति पाए जाने पर उसके द्वारा वशीभूत हो जाते हैं। रूप गोस्वामी ने सब अपने ग्रंथों में, रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या था, किस लिए आए, राधा भाव का स्वादन करने के लिए जो पुरी में गंभीरा ने किया, और राजवर्तमान देने के लिए, अतः तो राजानुगा पथ जगत में देने के लिए ये रूप गोस्वामी के माध्यम से उन्होंने दिया, इसके पहले कोई चीज नहीं दिया। रागानुगा मार्ग क्या है, रागात्मिक भक्तों का अनुगमन करते हुए, उनका चिंतन स्मरण अनुगत करते हुए उसको पाया जा सकता। रूप गोस्वामी ने जैसे भक्ति की, उत्तमा भक्ति की परिभाषा लिखी है अन्नाभिलाषिता सुंदर, उन्होंने निम्न स्तर से उत्तम महाभाव मादन मदनक भाव तक के समस्त भावों का की परिभाषा दी है। उत्तम भक्ति तो बतलाया अन्नाभिलाषिता सुंदर, उसका सर्वप्रथम अंकुर बीज कृष्ण गुरु कृपा से पाए भक्ति लता बीज, ये लता का बीज क्या है, कृष्ण सेवा की वासना गुरु ये देते हैं। जब ये आती है तो इसका लक्षण क्या है, श्रद्धा को अन्नो उपाय वर्जन, भक्ति चित्त उन्मुख, भक्ति उन्मुखी विशेष, समस्त और दूसरे उपायों को छोड़ करके कृष्ण को उन्मुख करना, कृष्ण के प्रति जीवों की वृत्ति को उन्मुख करना, कोटि कोटि जीवों की वृत्ति को सांसारिक वस्तुओं से हटा करके इधर में लाना कृष्ण के तरफ, ये सबसे बड़ी दया है, इसकी परिभाषा दी। निष्ठा स्थिर बुद्धि किंतु ज्ञान पूर्विका, स्नेह स्नेह आसक्ति, रुचि आसक्ति की परिभाषा दी, रति की परिभाषा दी, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा प्रेम सूर्यांश साम्य ये दिया, प्रेम की परिभाषा दी, जो प्रेम प्रेम के टूटने का की संभावना कारण होने पर भी वो प्रेम और बढ़ जाता है, और भी दो लक्षण उसके हैं, क्या ममता अत्यंत ममता विष्णु ममता प्रेम संगता और बतलाया सम्यक मणितो
शांत
शांत ममता अतिशय अंकित, ममता के ऊपर में भक्ति का स्तर होता है, जिसको जितना ममता कृष्ण के प्रति होगी उनकी भक्ति उतनी। दासों की कृष्ण पर ममता यहीं से आरंभ हो, किंतु ममता उनकी बहुत कम है। सखाओं की ममता कुछ और अधिक है, किंतु खेलते समय कृष्ण को भूख लग रही है उनको इसकी चिंता नहीं है। मैया को उसको उससे भी अधिक ममता है। वो जाकर के खेलते हुए कृष्ण को चलाकी से पकड़ करके ले आएंगी, खिलाएंगी, स्नान कराएंगी, आभूषणों से उनको भर देंगी, ये सब ममता। और कभी जरूरत पड़ेगी तो मालूम उस समय उनको ब्रह्म है ये, कृष्ण है, परब्रह्म है, ये सब ज्ञान नहीं है। उससे भी गोपियों की ममता कोटि गुण है कृष्ण के। कृष्ण के बिना वो रह नहीं सकती, क्षण क्षण में मरती है, क्षण क्षण में वो जन्म लेती है। राधा जी प्रेम के विरह में पागल हो गई, प्रलाप पक रही है, दिव्योन्माद में भ्रमर गीत भौरों को देख करके कभी उसे डांटती है, कभी कुछ करती है, कभी डर दिखलाती है, कभी विनय करती है कि भौरे आ गए, उन्होंने भेज दिया पुनः हमारे मनाने के लिए, तो क्या चाहते हो कि मैं चलूं उनके पास में मथुर द्वारका में या मथुरा में, ये कैसे हो सकता है। ओ कृष्ण के आ गए और कहते हुए ओहो कभी क्या कृष्ण हमें स्मरण करते हैं कि गोपियां कैसी हैं, फूल तो गति हैं, गोती हैं, किंतु रुक्मिणी सप्तभामा जैसे, क्या इसी रूप से भी करते हैं। और कहते हैं हाँ हाँ कृष्ण, कहते हुए मूर्छित हो यशोदा मैया का सखाओं का ऐसा ममता, ऐसी ममता नहीं है। ये सब रूप गोस्वामी की देन है। उन्होंने भक्ति शास्त्र रचना, तीर्थों का लुप्त, तीर्थों का उद्धार, शास्त्रों का प्रणय और सदाचार,
वैष्णव सदाचार
का प्रचार, ये सब कर करके महाप्रभु के अभीष्ट को उन्होंने पूर्ण किया है। इस प्रकार से रूप गोस्वामी के अनंत वैशिष्ट हैं। हमने उससे तट के ऊपर में खड़े होकर के कुछ स्पर्श किया, इतना उनका उनके वैशिष्ट का अथाह समुद्र है जो कोई नहीं वर्णन। उनकी तरह तरह की ये छंद है जिसका अर्थ साधारण लोग नहीं लगा सकते, समझ ही नहीं सकते। राधा जी की स्तुतियां हैं, ललिता जी की स्तुतियां हैं, स्तव माला का जिसको जी गोस्वामी ने संग्रह किया उसमें उनका ये सब है। इस तरह से आज रूप गोस्वामी को हम चरणों में प्रणाम करते हैं और सबके हृदय में वो कृपा का संचार करें। गौ प्रणानंद महामंत्र पढ़ो।